प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीव वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
इसी सुंदर गीत के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम नए नियम से रोमियो की पत्री का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज भी रोमियो की पत्री के छठे अध्याय को हम जारी रखेंगे। पिछले कार्यक्रम में हमने छठे अध्याय को आरंभ किया था और इसके 1 से 14 पदों को देखा। वास्तव में परमेश्वर का ज्ञान पवित्र बाइबल हमको आत्मिक लाभ पहुंचाता है और हमारा विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। छठे अध्याय के 1-14 पदों में संत पौलुस ने पवित्रीकरण तथा निर्दोषीकरण दोनों को एक ही श्रेणी में रखा है, अर्थात इन दोनों का आधार एक ही बताया है और वो आधार है विश्वास। विश्वास इस पर कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। प्रेरित पौलुस ने 11वें पद में बताया कि तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो, और जब ये शरीर पाप के लिए मर गया तो इस मरणहार शरीर में पाप को प्रभुता ना करने दो। हमने आपको बताया कि हमारा पुराना स्वभाव सदा क्रियाशील रहने का प्रयास करता है, ये शांत नहीं बैठता, परंतु पवित्र आत्मा इस पर नियंत्रण रखता है। और यदि तनिक भी इस पुराने मनुष्यत्व को छूट दे देते हैं तो ये बड़ी सामर्थ्य के साथ अपना कार्य करता है और हमारे आत्मिक जीवन को भयंकर हानि पहुंचाता है। ये पिटारे में बैठे हुए रखे हुए सांप के समान है। जैसे ही पिटारा ढीला होता है सांप फन बाहर निकालता है। उसी प्रकार से ये पुराना मनुष्यत्व है, यदि हम इस पर नियंत्रण ना रखें, इसकी ओर से लापरवाह हो जाएं, तो ये हमें हानि पहुंचाने के लिए हर समय तैयार रहता है। इसलिए प्रतिपल हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है और इसलिए पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि तुम अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए ठीक उसी प्रकार से सौंप दो जैसे कि तुमने अपने शरीर को अर्थात अपने शारीरिक अंगों को शैतान के हथियार बनने के लिए सौंप रखा था। उसका लाभ ये होगा कि पाप तुम पर अर्थात मुझ पर प्रभुता करने नहीं पाएगा। अंगों को परमेश्वर को सौंपने का तात्पर्य यह है कि अब आगे से हम उन्हें अपनी स्वेच्छा से प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि हमारे देश में जब बेटी को विवाह द्वारा उसके पति के हाथ में सौंप देते हैं तो उसके पश्चात माता पिता का अपनी बेटी पर से सारा अधिकार हट जाता है, उन्हें कोई अधिकार नहीं रहता। वे अपनी इच्छा से उसे अपने घर भी नहीं बुला सकते और ना उसे भेज सकते हैं। सो आज हम धार्मिकता अथवा पाप के दास होने के विषय में अध्ययन करेंगे। सो आइए हमारे साथ देखें रोमियो की पत्री 6:15 पद। तो क्या हुआ, क्या हम इस कारण पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। मित्र, 15वें पद की तुलना प्रथम पद से की जा सकती है। प्रेरित पौलुस प्रथम पद में बताते हैं, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह अधिक होता जाए? मित्र, हम परमेश्वर के अनुग्रह का दुरुपयोग ना करें। पौलुस हमें ये बताना चाहते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह का दुरुपयोग ना करें और ना ही अनुग्रह का अनुचित अर्थ लगाएं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप करने की छूट कदापि नहीं देता। परमेश्वर का अनुग्रह तो हमें मन परिवर्तन की ओर ले जाता है। मन परिवर्तन का तात्पर्य है कि हमने अपने पापमय जीवन से मुख फेर कर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया है। सो 15वें पद में प्रेरित पौलुस कलीसिया से प्रश्न करते हैं कि अब जब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, तो क्या हम पाप करते रहें? क्या अनुग्रह का अर्थ यही है? यह इस प्रश्न को पद 1 से थोड़ा सा भिन्न रूप में पूछा गया है। हमने देखा कि हमारा निर्दोषीकरण तथा पवित्रीकरण परमेश्वर पर विश्वास द्वारा ही संभव हुआ है, और जब हम ये जान लेते हैं कि एक मसीही होते हुए हम परमेश्वर के योग्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो ये वास्तव में हमारे लिए एक अच्छी बात है, और तभी हम वास्तव में इस जीवन को परमेश्वर के द्वारा व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर को अपने जीवन को हमारे द्वारा प्रकट करने की स्वतंत्रता दे देते हैं, अर्थात परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा स्वयं को व्यक्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है, दर्शा सकता है। और आज परमेश्वर यही चाहता है कि उसको वो शरीर प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा वह स्वयं को प्रकट कर सके। क्या आप अपनी देह को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप परमेश्वर के प्रतिनिधि बन सकते हैं। मित्रवर, जब मसीही जीवन के विषय में चर्चा करते हैं तो हम किसी धर्म की चर्चा नहीं करते। जब मसीही जीवन अर्थात क्रिश्चियन जीवन के विषय में हम चर्चा करते हैं तो हम किसी धर्म की चर्चा नहीं करते। मसीही जीवन कुछ नियमों का पालन करना नहीं है, कुछ कार्यों को करना नहीं है, कुछ विधियों का पालन नहीं है, क्योंकि आप अनेक नियमों और विधियों का पालन करने के पश्चात भी मसीही जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रहते हैं। अब आप अपने मन में अवश्य सोच रहे होंगे कि तब मसीही जीवन है क्या? मित्र, मसीही जीवन मसीह का आज्ञाकारी जीवन है, अर्थात मसीह की आज्ञा पालन करना मसीही जीवन है। और इसका तात्पर्य है मसीह से हमारा संपर्क। बिना संपर्क के मैं और आप मसीह के आज्ञाकारी नहीं बन सकते, क्योंकि हम उनसे आज्ञा प्राप्त ही नहीं कर सकते। मेरे मित्र, क्या आप मसीह से प्रेम करते हैं? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये प्रश्न किया, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हम केवल आज्ञा पालन द्वारा अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारे समक्ष दो अवस्थाएं हैं। मसीह के साथ एकात्मता ही पवित्रीकरण की अवस्था है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। इसे हमने पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन अर्थात स्थितीय पवित्रीकरण के नाम से जाना। ये आधारीय अर्थात बुनियादी बात है, परंतु मसीह की आज्ञा का पालन करना पवित्रीकरण का अनुभव करना है, और यही व्यवहारिक शुद्धिकरण या पवित्रीकरण है। और इस प्रकार मसीह के साथ एकात्मता स्थितीय शुद्धिकरण है, और मसीह की आज्ञा का पालन करना व्यवहारिक शुद्धिकरण है। ये एक अनुभव है और यही मसीहत है। आप धर्म विधियों का उस स्तर पर पालन ही नहीं करते जिसके द्वारा आप शुद्ध हो सकें या पवित्र ठहरें। अब यहाँ ये प्रश्न नहीं कि आप कैसे चलते हैं अर्थात कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु प्रश्न यह है कि आप कहाँ चल रहे हैं। क्या आप ज्योति में चल रहे हैं? क्या आप मसीह की सहभागिता में चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रिय मित्र, आप कहाँ चल रहे हैं? यदि आप मसीह में चल रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, तो आप अंधकार में नहीं चलेंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि पाप मसीह से हमारी सहभागिता को नष्ट कर डालता है। अर्थात जब हम पाप करते हैं तो हमारी सहभागिता प्रवेश मसीह के साथ नहीं रहती, हम अंधकार में चलना आरंभ कर देते हैं। तब हमें तुरंत सहभागिता स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें पश्चाताप की आवश्यकता है, और पवित्र बाइबल बताती है कि यदि हम ज्योति में चलें तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरित शमौन पत्रस से कहा, जबकि वे वहां ध्यान कुटीर अर्थात अपर रूम में थे, उन्होंने कहा, यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई भाग नहीं। यूहन्ना 13 अध्याय का 5वां पद और 8वां पद है ये। मित्र, जब तक हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, उनको नहीं मान लेते, मसीह के साथ हमारी किसी प्रकार की कोई सहभागिता नहीं हो सकती। हमें मसीह के साथ चलने के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता है। और यूहन्ना की प्रथम पत्री का के 1 अध्याय का 9वां पद हमें बताता है कि हमारा कार्य ये है कि हम अपने पापों को मान लें, और उसका कार्य यह है अर्थात परमेश्वर का कार्य यह है कि वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करे। मेरे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखें, क्योंकि जब हम उनकी सहभागिता में हैं तो हम ज्योति में चलते हैं और हम पाप नहीं करते रहते। किंतु जब हम उनकी सहभागिता से हट जाते हैं तो हम पाप में पड़ जाते हैं और हम अंधकार में चलते हैं। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें और तब हम वास्तव में मसीही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज अनेक ऐसे मसीही लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मेरा उद्धार हो चुका है और मैं दंड से बच चुका हूं, अब जो मेरा मन चाहेगा मैं वैसा ही करूंगा। प्रिय मित्र, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। यदि आप अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, दूसरे शब्दों में आपने अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं किया है, केवल विश्वास किया है, और जब आप इस अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं तो आप वैसा नहीं कर सकते जो आपको भाता है। दूसरी ओर प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना बहुमूल्य रक्त देकर मोल ले लिया है। अब आप अपने नहीं हैं, आप मसीह के दास हैं, और इसलिए दास स्वतंत्र नहीं कि जो चाहे वो करे। आपको वही करना है जैसा प्रभु चाहते हैं। आपको परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करना है, और सुंदर बात यह है कि परमेश्वर स्वयं इस जीवन को व्यतीत करने के लिए आपको अपनी सामर्थ्य देते हैं। सो हमको ध्यान रखना है कि यदि आप अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपको भाए आप उसे करें। आठवें अध्याय में हम इस स्वतंत्रता पर और अधिक विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। गलातियों की मंडली को पत्र लिखते समय प्रेरित पौलुस ने तीन बातों को स्पष्ट किया, और ये तीन बातें हैं जिनके आधार पर हम जीवन अर्थात मसीही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पहली बात, आप व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरी बात, आप स्वच्छंदता से जीवन व्यतीत कर सकते हैं अर्थात स्वेच्छाचारी बन सकते हैं। और तीसरी बात, आप पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार चलना चाहता है तो उसे अपने कुछ सिद्धांत बनाने पड़ते हैं। मैं एक फिल्मी सितारा के विषय में पढ़ रहा था। उसका कहना था, मैंने अपना संपूर्ण जीवन लैंगिक संबंधों के लिए दे दिया है। ये उसकी व्यवस्था अर्थात नियम है, वो उसके अनुसार जीवन व्यतीत करता है। श्रोता, यदि आप व्यवस्था या नियमों के अनुसार जीवित हैं तो आप पुराने मनुष्यत्व अर्थात स्वभाव के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप किसी नियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं। दूसरा ढंग पौलुस बताते हैं स्वच्छंदता। परंतु यदि आप वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आप मनमाना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। आप स्वच्छंद नहीं हो सकते। आपको वही करना होगा जो मसीह को भाता है। आपको मसीह की आज्ञा का पालन करना होगा और स्वयं को उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये एक व्यवहारिक बात है, आप स्वच्छंद नहीं हो सकते। 16वें पद में हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। मेरे मित्र, यहां प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते? जी हां, विश्वासी ये बात नहीं जानते। उसे ये जानने की आवश्यकता है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है। यदि हम पाप के हाथों में अपना जीवन सौंपते हैं तो हम मृत्यु के लिए अपना जीवन सौंपते हैं, किंतु यदि हम आज्ञाकारिता के लिए अपना जीवन सौंपते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता है, तो उसका परिणाम धार्मिकता है। परमेश्वर पिता हमको धर्मी ठहराते हैं। तथा 17वें पद में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के आज्ञाकारी हो गए जिसके लिए तुम समर्पित हुए थे, और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। मित्र, ये एक अन्य सत्य है कि नए स्वभाव में कोई सामर्थ्य तो नहीं है। हम ऐसे ही दुर्बल हैं जैसे पहले थे, इसलिए हमें विश्वास द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। उद्धार पाने के पश्चात हम कोई बड़े सामर्थ्य व्यक्ति नहीं हो जाते, हम वैसे ही रहते हैं, किंतु हमें परमेश्वर की ओर से एक सहायक प्राप्त होता है जो हमारी सहायता करता है कि हम उचित और धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर सकें। केवल परमेश्वर का आत्मा ही हमारे भीतर मसीह को और उसके जीवन को उत्पन्न कर सकता है। प्रभु ने हमें पाप से स्वतंत्र किया है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम हमारे पाप मिट गए और अब हम स्वयं परमेश्वरीय जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो जाएंगे। नहीं मित्र, हमको परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। 19वां पद बताता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर बोल रहा हूं कि जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था, परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया, उसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए समर्पित कर दो कि जिसका परिणाम पवित्रता हो। तब आगे 20वें पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। दूसरे शब्दों में, जब तुम पाप के दासत्व में थे तो धार्मिकता तुम्हारे जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी, क्योंकि तुम पाप के लिए जीवित थे और धार्मिकता के लिए मरे हुए थे। 21वें पद में हम पढ़ते हैं, जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय पर क्या लाभ प्राप्त करते थे, क्योंकि उनका परिणाम तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें ये फल मिला जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत अनंत जीवन है। मित्रवर, यहां प्रेरित पौलुस सुंदर बात कह रहे हैं, धार्मिकता का आपके जीवन में उस समय कोई हस्तक्षेप नहीं था जब आप पाप कर रहे थे, परंतु अब जब आप धार्मिकता के दास हो गए हैं तो पाप को अपने जीवन से अलग रखने की आवश्यकता है। पाप तुम पर प्रभुता ना करे, इसलिए अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दो। अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको पवित्रता और अनंत जीवन का फल मिला है। मेरे मित्र, अपने पापों से लज्जा, ये एक नया अनुभव है जो हमें नया जीवन प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त होता है। एक विश्वासी जन अपने पापों से लजाने लगता है, दुखी होता है, वही पाप जिन पर वो गर्व करता था। परमेश्वर के दास होना विश्वासी के लिए सुनहरा अवसर है। वह उस पाप से मुक्त किए गए व्यक्ति हैं जो उन्हें अनंत मृत्यु की ओर ले जा रहा था। हमारा जीवन फलहीन जीवन था, परंतु अब हम फल ला सकते हैं, ऐसा फल जो अनंत काल तक जीवित रहेगा, अर्थात दूसरों को मसीह के समीप ला सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिला सकते हैं। तब 23वें पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कह रहे हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रवेश मसीह में अनंत जीवन है। यहां प्रेरित पौलुस पाप और परमेश्वर के अनुग्रह को, उनके वरदान को स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया कि तुम पाप से स्वतंत्र हुए हो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, इसलिए अब परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें ये फल मिल गया जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, किंतु जो कुछ तुमको प्राप्त हुआ है वो परमेश्वर में प्रवेश मसीह के द्वारा हुआ है। तुमने प्रवेश मसीह के कारण अनंत जीवन को प्राप्त किया है। ये बड़ा सिद्धांत है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे मित्र, मैं जानता हूं कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, वो जीवित रहना चाहता है। इसलिए यदि आप जीवन की आशा रखते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के समीप आ सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन है। मेरे मित्र, शैतान मनुष्य को नाना प्रकार से वेतन देता है, सुविधाएं देता है, वो नाना प्रकार से आपको नाश करने के साधन आपके सामने रखता है। वो ये देखना चाहता है कि आपको आपके पाप का उचित मूल्य मिला या नहीं। यदि आप ईमानदारी से शैतान की सेवा करेंगे तो वह आपको अनंत काल की मृत्यु आपकी सेवाओं के बदले मजदूरी के रूप में देगा। परंतु स्मरण रखिए, परमेश्वर आपको बिना किसी कार्य के आपको अनंत जीवन का वरदान देगा। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, वो जीवन जो आप केवल विश्वास द्वारा प्राप्त करेंगे, विश्वास उस पर कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो आपका उद्धार कर सकता है, वो एक घृणित पापी को अपनी संतान बना सकता है, वो मृत्यु के योग्य पापी को अनंत जीवन का वारिस बना सकता है, वो आपको अर्थात उस पापी को जो घृणित है उसे पवित्र कर सकता है, निर्दोष ठहरा सकता है, धर्मी ठहरा सकता है। जी हाँ, केवल परमेश्वर पर इस विश्वास के द्वारा आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। सो मुझे आशा है आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से आपको अवश्य लाभ हुआ है। हमने इस अध्ययन में सीखा कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं तो हम अपने शरीर के इन अंगों को परमेश्वर के सामने उसके हाथों में सौंप दें, अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दें। और जब हम ऐसा करते हैं तब पाप हम पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। मेरे मित्र, पवित्र बाइबल हमको बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो मनुष्य पाप करता है उसको मरना है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रवेश मसीह में अनंत जीवन है। अब इन्हीं वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा और सहायता करे। आमीन।
श्रोताओ, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और यदि आज के अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। श्रोताओ, हम आपको बता दें कि आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है hindittb@radiovv.org, hindittb@radiovv.org। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।